الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اے میرے بندو، یا عبادی، لو ان اولکم و آخرکم، اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن قاموا فی سعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور ایک ہی وقت میں فسألونی، سب مل کر اپنی اپنی حاجتیں مانگے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک، اور پہلے جن سے آخری جن تک، کروڑوں ابجوں افراد ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں مجھ سے اپنی ساری حاجتیں مانگیں. فآتیت کل انسان مسئلتہ، پھر میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز دوں. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. تو یہ ان سب کا، کروڑوں ابجوں انسانوں اور جنوں کا مجھ سے مانگنا، اور میرا ان سب کی مانگی ہوئی ساری چیزیں ان کو دینا، یہ میرے پاس جو خزانہ ہے اس میں سے اتنا ہی کم کرے گا جتنا کہ ایک سوئی جب سمندر میں داخل کی جاتی ہے اور پھر نکالی جاتی ہے، وہ سوئی سمندر کے پانی میں سے کم کرتی ہے. سمندر میں سوئی کو داخل کرو، اوشن میں، और उसमें से सुई को निकालो, तो ये सुई समंदर के पानी में जितनी कमी पैदा करती है, समंदर में सुई दाखिल करने से पहले समंदर को देखो, फिर समंदर में सुई दाखिल करो और सुई को निकालो, तो निकालने के बाद आपको समंदर में जितनी कमी नजर आती है, तो तमाम इंसानों और तमाम जिन्नों की सारी जरूरतों को एक ही वक्त में पूरी करूं और उनकी मांगी हुई सारी चीजें अपने खजाने से निकाल निकाल कर दूं और फिर मैं अपने खजाने को देखूं तो उसमें मुझे उतनी ही कमी नजर आएगी। इसका मतलब यह है कि कोई कमी नहीं आएगी। ये ऐसा ही है जैसा कि हक ताला शानहु फरमाते हैं कि इदा अराद शैअन इन्नमा अमरुहु इदा अराद शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। अल्लाह ताला शानहु का मामला तो यह है कि जब वो किसी चीज को वजूद में लाने का इरादा फरमाते हैं तो कुन फरमाते हैं और वो हो जाती है। आप फरमाते हैं कि हो जा और वो हो जाती है, बी एंड इट इज, ये कुन कुन फरमाते हैं कि हो जा और वो हो जाती है। तो हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला शानहु की मशीयत जब किसी चीज के साथ मुताल्लिक हो जाती है, यानी इरादा हो जाता है कुछ करने का, तो इरादा होते ही वो चीज वजूद में आ जाती है। इरादा और इरादे के बाद कुन बोले तो कुन बोलने में एक सेकंड दो सेकंड तो जाएंगे ना, तो इरादा और इरादे के बाद कुन बोले और कुन बोलने के बाद वो चीज वजूद में आए, तो ये तो दो सेकंड का फासला हो गया। इससे हक ताला शानहु की शान मुनज्जा है कि इतनी भी ताखीर हो, इधर इरादा हुआ कि उधर वो चीज वजूद में आ गई, यानी इरादा और वो चीज मौजूद, बीच में कुन नहीं होता, अल्लाह बोलते नहीं है कुन, इरादा फरमाते हैं वो चीज हो जाती है। लेकिन इंसान को ये बतलाना चाहते हैं हक ताला शानहु कि मैं जब कोई चीज बनाना चाहता हूं तो तुम्हारी तरह नहीं कि पहले इरादा होता है, उसके बाद गौर व फिक्र होता है, उसके बाद उसका जहन में स्केच तैयार होता है, उसके बाद मशवरा होता है, उसके बाद पेपर के ऊपर एक नक्शा तैयार होता है, उसके बाद बनाने वालों को ढूंढा जाता है। तो हमें समझाने के लिए कि कुन फयकुन, इससे हमें समझ में जल्दी आ जाता है, हमें समझाने के लिए कहा कि मैं जब कोई चीज बनाना चाहता हूं तो मुझे कोई प्लानिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, गौर व फिक्र की जरूरत नहीं, कुन फयकुन, ये हमें समझाने के लिए कहा। तो ये सुई जब समंदर में दाखिल की जाती है और सुई को समंदर से निकाला जाता है तो सुई पर कुछ ना कुछ पानी तो आता है, और जब उस पर पानी आता है इसका मतलब ये कि समंदर में कमी हुई। समंदर में कमी हुई तो इसके साथ जो तशबीह दी गई कि सुई समंदर में दाखिल की और फिर सुई निकाली, इसका मतलब यह कि समंदर में कुछ ना कुछ तो कमी हुई। तो सारे इंसान और सारे जिन्नात एक मैदान में खड़े होकर मुझसे अपनी दिल की सारी चाहतें मांगे और मैं उनकी सारी चाहतें पूरी कर दूं तो उतनी कमी मेरे खजाने में होगी जितनी कि इस सुई के समंदर में जाने की वजह से समंदर में कमी हुई। तो इतनी कमी का होना यह भी हक ताला शानहु की शान के खिलाफ है, उसके खजाने में तो कोई कमी नहीं आ सकती, उसके खजाने में कोई कमी नहीं आ सकती। तो यह बात जो हक ताला शानहु ने फरमाई वो ये बतलाने के लिए नहीं फरमाई कि जिस तरह सुई के समंदर में दाखिल करने से थोड़ी बहुत कमी आती है, इसी तरह सबको मैं दूं तो थोड़ी कमी, ये बतलाने के लिए नहीं। सबसे छोटी चीज जो बतौर मिसाल के इंसानों के लिए बयान की जा सकती थी वो सुई थी। सुई से छोटी कोई चीज नहीं थी। और सुई जो है वो लोहे की बनती है, वो पानी को अपने अंदर जज्ब कर नहीं सकती। और सुई जो है वो मुलायम होती है, तो उसमें पानी चिपकता नहीं इतना। तो सबसे छोटी चीज और सबसे बड़ी चीज जिसको अपने खजाने के साथ इंसानों के लिए तशबीह दी जा सकती थी वो समंदर है। समंदर पहाड़ से भी बड़ा, समंदर जमीन से भी बड़ा। तो इधर सबसे बड़ी चीज जो इंसान देख सकता था और इधर सबसे छोटी चीज जो इंसान देख सकता था, इन दोनों के जरिए तशबीह दी। और तशबीह देकर कहा कि देखो जब सुई अंदर जाती है और फिर सुई को आप निकालते हैं तो सुई को मत देखो कि सुई के साथ पानी निकला है, समंदर को देखो कि समंदर में कोई कमी नजर आती है। बंदों को सुई की तरफ देखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, समंदर की तरफ, कि समंदर में सुई को दाखिल करते हैं और फिर निकालते हैं तो सुई के साथ पानी आ गया ये मत देखो, समंदर में कोई कमी है। कहते कि ना समंदर में कोई कमी नहीं। तो कहा बस हमारे खजाने में भी इसी तरह कमी नहीं आती। और मैं अगर इसको दूसरे अंदाज से आपको समझाऊं कि समंदर में सुई डाली और सुई निकाली, तो अल्लाह ने निजाम कायनात का ऐसा बनाया है कि चारों तरफ से नहरें बहती रहती है और बहते 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 वो समंदर तक पहुंचती है। तो हर आन और हर घड़ी समंदर में इजाफा होता है। तो तशबीह ये दी जा रही है कि सुई समंदर में दाखिल की और सुई निकाली और सुई के साथ थोड़ा पानी निकला, लेकिन जितना निकला इससे ज्यादा दाखिल हुआ, जितना निकला उससे ज्यादा दाखिल हुआ। तो क्या इसी तरह मैं अगर तमाम इंसानों को और तमाम जिन्नात को उनकी मांगी हुई सारी चीजें दूं तो जितना निकला है उससे ज्यादा मेरे खजाने में और दाखिल हुआ है, बढ़ता है मेरे खजाने में, कम नहीं होता। और अल्लामा इब्ने रजब अल हंबली रहमतुल्लाह अलैह ने एक इसराइली रिवायत नकल की है जिसमें हक ताला शानहु अपने बंदों से अपील करते हैं। क्या अपील करते हैं? कि मुझे दो नहीं, अपील ये करते हैं कि मुझसे लो। पूरी दुनिया देने की अपील करती है, वो एक जात है जो लेने की अपील करती है। और शेख मोहम्मद अव्वामा दामत बरकातुहुम ने उसको यहां नकल किया है कि हक ताला शानहु इरशाद फरमाते हैं कि अयु अम्मल गैर लिशदाइद वशदाइद बियदी। जो शख्स सख्तियों में मुब्तला है वो उन सख्तियों से नजात पाने के लिए मेरे अलावा से उम्मीदें बांधता है, जबकि सख्तियां तो मेरे कब्जे में है, मैं सख्तियों को लाता हूं और मैं सख्तियों को हटाता हूं। और फिर आगे कहते हैं कि वान अल हय्युल कय्यूम, यानी देखो दावत दे रहे हैं कि तुम्हारी जो भी जरूरत है मुझसे पूरी कराओ, ये दावत दे रहे हैं अल्लाह ताला शानहू। वान अल हय्युल कय्यूम, मैं अल हय्युल कय्यूम हूं, मैं जिंदा हूं और हर चीज को थामने वाला हूं। वान अल हय्युल कय्यूम वयुर्जा गैरी वयुतरको बाबुहू बिल बुकुरात, और मेरे अलावा से उम्मीदें बांधी जाती है और उसके दरवाजे को सुबह सुबह खटखटाया जाता है। जरूरतमंद सुबह को उठ के इसके घर जाता है, उसके घर जाता है। तो हक ताला शानहू शिकायत कर रहे हैं कि मुझसे लेने के बजाय दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, मुझसे लो। कितना प्यार है खालिक को अपने बंदों से। मेरे पास कोई कर्ज लेने के लिए आए तो मैं कहूंगा कभी कितने कर्ज की जरूरत है, तो कि एक लाख की। तो कि खैर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, एक लाख की जरूरत तो हमसे पूरी नहीं हो सकेगी, और नहीं मेरे मैं औरों के पास भी जाऊंगा। तो फिर ऐसा करो کہ پہلے ان سے ملاقات کر لو، کل میرے پاس آنا. اور دل میں خیال یہ آتا ہے کہ ادھر ہی سے 1,00,000 کا کوٹا اگر پورا ہو جائے تو اچھا ہے کہ یہ مصیبت ٹلے. اور یہاں اللہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ مجھ سے کیوں نہیں لیتے، مجھ سے لینے کے بجائے دوسروں کے پاس لینے کے لیے کیوں جاتے ہو، مجھ سے لو، مجھ سے لو، مجھ سے لو. تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَيُرْجَى غَيْرِ وَيُتْرَكُ بَابُهُ بِالْبُقَرَاتِ وَبِيَدِهِ مَفَاتِيحُ الْخَزَائِنِ وَبَابِي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي. فرماتے کہ میرے علاوہ سے امیدیں باندھی جاتی ہیں اور صبح صبح اس کے دروازے کو کھٹ کھٹایا جاتا ہے، حالانکہ تمام خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں ہیں اور میرا دروازہ ہر اس شخص کے لیے کھلا ہوا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے. من ذا الذی املنی لنائبت فقطعت به، ہے کوئی جس نے کسی تکلیف کے وقت مجھ سے امیدیں باندھی اور میں نے اس کی امید کو کاٹ دیا؟ من ذا الذی رجانی لعظیم فقطعت به، ہے کوئی جس نے مجھ سے امید باندھی کسی مصیبت کے وقت اور میں نے اس کی امید کو کاٹ دیا؟ من ذا الذی ترک بابی فلم افتح له، ہے کوئی جس نے میرے دروازے کو کھٹ کھٹایا ہو اور میں نے اس کے لیے میرا دروازہ نہ کھولا ہو؟ یہ اللہ یہ سوالات قائم کر کے بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر کہاں جا رہے ہو؟ زید عمر بکر کی طرف توجہ کر رہے ہو. اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ انا غایت الاعمال، اللہ اکبر اللہ اکبر، انا غایت الاعمال، میں تو امید کی انتہا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ میں افروز کے پاس چلا گیا امید لے کر، تو میں یہاں تک پہنچا، ابھی امید میں یہاں پہنچا. افروز نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، معاف کیجیے، تو امید میری ٹوٹ گئی. اب میں ادھر ادھر دیکھوں گا، ہاں افروز تو نہیں، چلو الیاس کے پاس چلے جاتے ہیں. الیاس کے پاس چلے گئے، وہاں بھی نہ، چلو مولانا اقبال صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، اور ہر مرتبہ امید بڑھتی ہے کہ افروز سے ہمارا کہاں اتنا گہرا تعلق بھی تھا، یہ تو قریب میں تھا تو پوچھ لیں، مولانا اقبال صاحب تو ہمارے خاص آدمی ہیں، ان سے پہلے رابطہ اس لیے نہیں کہا کہ لندن میں رہتے ہیں، ان سے کام اگر ہو جاتا ہو. اب وہاں گئے تو وہاں بھی امید ٹوٹی، مولانا سعید کے پاس گئے وہاں بھی امید ٹوٹی، کامران کے پاس گئے وہاں بھی امید ٹوٹی. تو کہا کہ میں تو امیدوں کی انتہا ہوں، امیدوں کی انتہا. جب پوری دنیا سے کوئی شخص مایوس ہو جاتا ہے اس وقت اس کی ایک امید باقی رہتی ہے کہ میرا اللہ کرے گا، میں تو امیدوں کی انتہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انا غایت الاعمال، میں تو امیدوں کی انتہا ہوں. فکیف تنقطع الاعمال دونی، پھر میرے پاس آنے سے پہلے ہی تمہاری امیدیں کیسے ٹوٹ جاتی ہیں؟ مجھے آزماؤ تو صحیح، میرے پاس آؤ تو صحیح. اب بخیل ہونا نا، اللہ اکبر، کیا خطاب ہے! اب بخیل ہونا نا، فیو بخیلونی عبدی، کیا میں بخیل ہوں کہ میرا بندہ مجھے بخیل سمجھتا ہے؟ الیس الدنیا والآخرہ والکرم والفضل کلہ لی، کیا پوری دنیا میری نہیں ہے؟ کیا پوری آخرت میری نہیں ہے؟ کیا فضل و کرم کی چابیاں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں؟ فما یمنع المؤملین ان یؤملونی، امید کرنے والوں کو کیا بات روکتی ہے، کیا چیز روکتی ہے امید کرنے والوں کو اس بات سے کہ وہ میرے اندر امیدیں باندھیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ لو جماعت و اہل السماوات والارض، اگر میں آسمان اور زمین والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لوں، ثم آتیت کل واحد منہم ما آتیت الجمیع، اس میں اور تاکید ہے، وہاں تو کیا تھا اس حدیث قدسی میں کہ میرے بندو اگر تم سارے کے سارے ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ اور تم سب اپنی خواہشات میرے سامنے پیش کرو اور تمہاری ساری ضرورتیں میں پوری کر لوں. افروز کو اس کی مانگی ہوئی چیز دوں, عبدالصمد کو اس کی مانگی ہوئی چیز دوں, حذیفہ کو اس کی مانگی ہوئی چیز دوں, سلیم کو اس کی مانگی ہوئی چیز دوں, یحییٰ کو اس کی مانگی ہوئی چیز دوں, پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی. یہاں یہ ہے کہ یحییٰ نے اپنی چیزیں مانگی, محمد علی نے اپنی مانگی, اور ہر شخص اپنی اپنی چیزیں مانگ رہا ہے, اور جب دینے کا وقت آیا تو یحییٰ کو یحییٰ کی مانگی ہوئی چیزیں نہیں دی. اس میدان میں جتنے لوگوں نے جو کچھ مانگا وہ سب کچھ یحییٰ کو دیا, اور وہ ساری چیزیں عبدالصمد کو بھی دے دی. یعنی پورے میدان والوں نے جتنا مانگا, تمام انسانوں اور تمام جنوں نے جو کچھ مانگا وہ سارا ہر ایک کو دیا, ہر ایک کو دیا. تو میرے خزانے میں کتنی کمی آئی. ثم آتیت کل لو جمعت اہل السماوات والارض, اگر آسمان اور زمین والوں کو میں جمع کر لیتا پھر میں ان میں سے ہر ایک کو وہ دیتا جو تمام کو دیا. وَبَلَّغْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَمَلَهُ, اور میں ہر ایک کو ان میں سے اس کی امید کی انتہا تک پہنچا دوں, مانگ مانگ کر وہ تھک جاوے. لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِ عُزْوَ ذَرَّةٍ, تو ایک چونٹی کے ایک عضو کے برابر بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ كَيْفَ يَنْقُصُ مُلْكٌ أَنَا قَيِّمُهُ. اللہ اکبر, اس سلطنت میں کیسے کمی آ سکتی ہے جس کا نگراں میں ہوں, جس سلطنت کا میں حاکم, جس سلطنت کا میں نگراں, جس خزانے کا میں خزانچی, اس میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ کہتے ہیں فیا بوسن للقانتین من رحمتی, افسوس ہے ان لوگوں پر جو میری رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. ویا بوسن لمن عصانی وتوتب على محارمی, افسوس ہے ان لوگوں پر جو میری نافرمانی کرتے ہیں اور میری حرام کی ہوئی چیزوں میں گھستے ہیں, شریعت مطہرہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں. یہ میرے بھائیو اللہ جل جلالہ عم نواد کی قدرت ہے, یہ اللہ کے خزانے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ید اللہ ملآ, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی شانہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی ہمارے جیسی باڈی نہیں ہے, اللہ کا ہمارے جیسا جسم نہیں ہے, لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے, اس لیے کہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہاتھ سے دیتے ہیں, چیک دیتے ہیں تو ہاتھ سے, سونا دیتے ہیں تو ہاتھ سے, تو خزانے میں سے جب کوئی نکالتا ہے تو خزانے میں کچھ نہیں رہے گا تو ہاتھ خالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے خزانے میں کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوتی, اس لیے اس کا ہاتھ بھی کبھی خالی نہیں ہوتا. ید اللہ ملآ, اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے رہتے ہیں, اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے رہتے ہیں. لا تغیدھا نفقتن, یعنی اللہ کے خزانے بھرے ہوئے رہتے ہیں. کسی قسم کا خرچ کرنا, کسی قسم کا سپینڈنگ اور ایکسپینڈیچر اس میں کمی پیدا نہیں کرتا. سحاؤ اللیل والنہار, وہ تو رات اور دن, رات اور دن لوگوں کو فیضیاب کرتا رہتا ہے. وہ خزانہ ایسا ہے کہ اس میں سے لوگوں کو فیض ملتا ہی رہتا ہے, مادی فیض بھی روحانی فیض بھی. اس خزانے سے مادی فیض بھی ملتا ہے, روحانی فیض بھی ملتا ہے. اس خزانے سے دنیاوی فیض بھی ملتا ہے, اخروی فیض بھی ملتا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جو دنیا میں ہیں, جو لوگ ان کی ساری مادی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, مٹیریل ضرورتیں, پھر روحانی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, اسپریچول ضرورتیں, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جو انتقال کر گئے ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کی بھی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں, کسی کو معاف کر رہے ہیں, کسی کو جنت میں داخل کر رہے ہیں, ہماری دعاؤں کی برکت سے کسی کی وہاں ضرورت پوری ہوتی ہے, ہمارے ایصال ثواب کی برکت سے کسی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افرائیتم ما انفق ربکم منذ خلق السماوات والارض, کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ खर्च करता चला आ रहा है जब से उसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया है। उसके खजाने से चावल बस आ रहे हैं, गेहूं आ रहे हैं, पानी आ रहा है, उसके खजाने से हर वक्त। वमा नुनज़िलुहु इल्ला बिकदरिन मालूम, अंदाजे से वो भेजता रहता है कि इस वक्त दुनिया में इतने इंसान रहते हैं तो इतने पानी की जरूरत है, इतने चावल की जरूरत है, इतने गेहूं की जरूरत है, इतने केलों की जरूरत है, इतने सेबों की जरूरत है, हमारी जितनी जरूरतें हैं उनको पता है सब। वइमिन शयइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु वमा नुनज़िलुहु इल्ला बिकदरिन मालूम, हर चीज के हमारे पास खजाने हैं, खजाने, और हम जरूरत के बकदर भेजते रहते हैं, जरूरत के बकदर भेजते रहते हैं, कभी कमी नहीं होती। हां, हम कभी कमी करते हैं बंदों से नाराज होकर, और बंदों से नाराज होकर कमी करते हैं ताकि उस कमी से घबरा कर वो दोबारा हमारी तरफ रुजू कर ले, उसमें भी हमारी रहमत है, उसमें भी हमारी रहमत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जरा देखो तो सही, तुम मुझे जरा बतलाओ तो सही कि जब से आसमानों और जमीनों को अल्लाह ताला शानहु ने पैदा किया है कितना खर्च किया है, कितना खर्च किया है। ये पाउंड और डॉलर और सोना और चांदी और हीरे और जवाहरात, ये जो कुछ भी अल्लाह देता है, अल्लाह देता है। इन्फ्लेशन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए कि मीजान उसके हाथ में है, बियदिल मीजान, अल्लाह खुद फरमाते हैं कि मीजान मेरे हाथ में है, पलड़ों को मैं ऊपर नीचे करता हूं, कभी फरावानी हो जाती है, कभी फक्र आ जाते हैं, कभी रिसेशन नजर आता है, कभी इन्फ्लेशन नजर आता है, ये सब मेरे कब्जे की कुदरत में। दुनिया की सारी हुकूमतें मिलकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, नहीं कर सकती। दुनिया की सारी हुकूमतें मशवरे करें, इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े माहिरीन बैठ करके मशवरा करें कि रिसेशन को किसी तरह कंट्रोल करो, नहीं कर सकते, इसलिए कि उसके फैसले तो मैं करता हूं। वल्लाहु यकबिदु वयबसुत, वल्लाहु यकबिदु वयबसुत, अल्लाह मुट्ठी को बंद भी करता है और अल्लाह मुट्ठी को खोलता भी है, और सारे खजाने अल्लाह के हाथ में है, वो जब चाहे मुट्ठी बंद कर ले, जब चाहे मुट्ठी खोल दे। इसलिए रात को जो मालदार होने की हालत में सोता है उसके बारे में अल्लाह मुट्ठी बंद करने का फैसला करे तो सुबह गरीब होकर के उठता है, और रात को जो गरीब होने की हालत में सोता है अल्लाह ताला उसके लिए हाथ खोलने का फैसला करे तो सुबह को मालदार होकर के उठता है। इल्म के खजाने उसके पास, किसी को इल्म मिलता है वहां से मिलता है, नेक काम करने की तौफीक के खजाने उसके पास, अगर तौफीक, गुनाहों से बचने की जो तौफीक है उसके खजाने उसके पास। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की ताकत, ये अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकती, खजाने उसके पास है। किसी भी चीज पर इतराना नहीं चाहिए, जो इतराया वो गया, जो इतराया वो गया। एक शख्स घर में अपनी बेगम के साथ बैठा हुआ था, अपनी बेगम के साथ बैठा हुआ था, बड़े मजे से खाने पीने का माहौल, मौसम भी अच्छा, उम्दा उम्दा खाना पका हुआ था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला गया, अबे फकीर अल्लाह के लिए कुछ दे दो, फकीर हूं अल्लाह के लिए कुछ दे दो। कौन है भाई? फकीर है। नौकर धक्के देकर निकालो इसको, ये कामचोर लोग, सुस्त लोग, कुछ करना नहीं चाहते और दूसरों की रोटियों के टुकड़ों पर जिंदगी गुजारना चाहते, निकालो इसको, धक्के देकर के उसको निकाल दिया, निकाल दिया बेचारे को, निकल गया वो। अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु ने कुछ दिनों के गुजरने के बाद उसकी जिंदगी बदली, उसकी जिंदगी बदली, उसे मालो दौलत से नवाजा, शादी हो गई उसकी, शादी हुई और शादी होने के बाद बहुत उम्दा मकान हर एतबार से, और वो ऐसे माहौल में बैठा हुआ है। अब रात को खाने का वक्त है, बहुत अच्छा मौसम, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा हुआ है कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला गया, अल्लाह के लिए कोई चीज दे दो। अब ये तो बेचारा इस तरह से गुजरा था, इसे तो पता था कि फकीर होने का क्या माना होता है। कौन है? कहा कि फकीर है, मांग रहा है। नौकरों को कहा कि हमारे लिए जो कुछ पका है सब इसे दे दो। सब उसे दे दो। अब ये लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बेगम से कहा कि वो बेचारा बाहर ठंडी में खड़ा है, अंदर बुला लो जरा उसे, अंदर बुला लो, जब तक हमारे नौकर पूरा पैकिंग वगैरह से फायर। बेगम गई, बेगम ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला और उसे कहा कि अंदर आ जाओ। वो बाहर अंधेरे में खड़ा था, अंदर घर की रोशनी में आ गया। और इधर बेगम रोते हुए आई, बेगम रोते हुए आई, कि तुझे क्या हो गया? तू कहा कि मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि जो फकीर दरवाजे पे दस्तक दे रहा है वो मेरा पहला शोहर है, वो तो मेरा पहला शोहर है। और हुआ ये था कि एक दिन इसी तरह खाने के वक्त में हम बैठे हुए थे और एक फकीर ने दस्तक दी थी और बड़ी बदतमीजी से उसको धक्के देकर उसने निकलवाया था और हालात बुरे आए, और बुरे हालात आए और हालात के नतीजे में मुझे तलाक देनी पड़ी और उस तलाक के बाद मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई। और ये हमारा घर है, ये वही घर है जहां से मेरे शोहर ने धक्के देकर के निकाला था और आज उसी दर के ऊपर वो फकीर बन करके आया है। तो उसके नए शोहर ने कहा कि शायद तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही शख्स हूं जिसे तेरे शोहर ने इस दर से भगाया था। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, सारे खजाने अल्लाह के हाथ में। जब सारे खजाने अल्लाह के हाथ में है तो इतराओ मत, इसलिए कि उसे इतराना पसंद नहीं, और जब कोई इतराता है तो उसकी लाठी में आवाज नहीं है। इल्म वहां से मिलता है, तौफीक वहां से मिलती है, हिदायत वहां से मिलती है, नूरानियत वहां से मिलती है, रूहानियत वहां से मिलती है, मादी रूहानी दुनियावी उखरवी सारे खजाने वहां से मिलते हैं। इतराना नहीं चाहिए और अपनी सारी जरूरतें उसके सामने पेश करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए तो मोची के पास जाने से पहले अल्लाह से कहोगे, अल्लाह मैं मोची के पास जा रहा हूं, इसलिए कि अगर अल्लाह से नहीं मांगोगे हो सकता है कि आप वहां जाओ और मोची सोया हुआ हो सकता है कि घरवाली ये कहे कि इस वक्त वो बाहर गए हैं कल आना, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो मोची ये कहे कि नहीं आज मैं काम करना नहीं चाहता, अब कल आना। हो सकता है वो ये कह दे कि आपका काम करना नहीं चाहता। जब तक वो ना चाहे, उसके खजाने से तकसीम ना हो, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई रूहानी शख्सियत अल्लाह की कायनात में पैदा नहीं हुई। लेकिन आप भी क्या फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, तुम्हें जो कुछ लेना है वहां से लो, इसलिए कि जब वो फैसला करेगा तो मैं तकसीम कर सकूंगा, मैं भी तकसीम करता हूं। अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को मुझसे जो कुछ मिला है वो मैंने नहीं दिया है, दिया अल्लाह ने है, अल्लाह ने मेरे जरिए तकसीम करवाया है। जैसे एक उस्ताद शागिर्द से कहे कि ये मिठाई सब में तकसीम कर दो, तो वो तो तकसीम करने वाला है, मिठाई तो उस्ताद की है। इसी तरह जो कुछ मिलता है नबी से भी मिलता है, किसी बुजुर्ग से, वली से, उस्ताद से जो कुछ हमें मिलता है, मां बाप से, हदिये की शक्ल में, खाने पीने की शक्ल में, इल्म की शक्ल में, रूहानियत की शक्ल में, देने वाला अल्लाह है, बाकी सब तकसीम करने वाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम देखते नहीं कि जब से अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मन वालुहु ने आसमानों और जमीनों को पैदा किया है वो खर्च करता चला आ रहा है। फइन्नहु लम यगिद माफी यमीनही, लेकिन उसके खजाने में जो जो चीजें हैं उसमें कोई कमी नहीं आई है, आज तक कमी नहीं आई। अल्लाह ताला शानहु इस खालिक के साथ हमें ताल्लुक नसीब फरमा दे, इस खालिक के साथ ताल्लुक नसीब फरमा दे, इस खालिक के साथ ताल्लुक नसीब फरमा दे। हमारे बाज़ बुजुर्गान दीन ये कहा करते थे कि मैं वो शख्स हूं जिसके हाथ अल्लाह के खजाने में है, मैं वो शख्स हूं जिसके हाथ अल्लाह के खजाने में, मैं किसी का मोहताज नहीं, मुसल्ला बिछाता हूं, अल्लाह से मांगता हूं, अल्लाह भेज देता है। भेज देता है कि मतलब कि इंसानों को भेज देता है, लेकिन मुझे किसी के सामने जलील नहीं होना पड़ता, किसी को सलाम नहीं करते रहना पड़ता, हक बातिल में तमीज किए बगैर किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। मैं वो शख्स हूं जिसके खजाने अल्लाह के हाथ में। हजरत अल्लामा यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह से एक ताजिर ने कहा कि आपके पूरे मदरसे का एक साल का खर्चा मेरी तरफ से। हजरत ने फरमाया कि उसके बाद जब एक साल खत्म हो जाए उसके बाद बस एक साल। तो कहा चलो हजरत आपका हमारा ताल्लुक है, दो साल के लिए पूरा खर्चा मेरी तरफ से। हजरत ने फरमाया उसके बाद तो कहा चलो हजरत फिर तीन साल कर लेते हैं। उसके बाद चार साल का खर्चा मेरी तरफ से। आप दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला बरकत दे, ये सिलसिला चलता रहे। उसके बाद पांच साल। उसके बाद हजरत अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। तो हजरत ने फरमाया कि अल्लाह इस वक्त कहां है? पांच साल के बाद अल्लाह मेरी मदरसे की किफालत करेगा, तो इस वक्त अल्लाह कहां है? इस वक्त अल्लाह कहां है? अल्लाह नहीं है कि पांच साल तक मैं इंतजार करूं और तेरी तरफ नजर रखूं? हजरत ने फरमाया कि नहीं चाहिए, पांच साल के बाद भी मेरा अल्लाह है, अभी भी मेरा अल्लाह है। पांच साल के बाद जो अल्लाह मेरे मदरसे को चलाएगा आज भी चलाएगा, आएगा चंदा खुद अल्लाह भेजेगा। अल्लाह से लेना सीखो मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह की तरफ तवज्जो रखो, अल्लाह के साथ उम्मीद रखो और मांगो, खूब मांगो। दुनिया की अपनी जायज हाजतें भी मांगो और उससे ज्यादा अपनी आखिरतों को मांगो, और अपनी शान के मुताबिक नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं, अल्लाह की शान के मुताबिक, अल्लाह की हैसियत के मुताबिक। अपनी हैसियत को मत देखो, अल्लाह की हैसियत को देखो। अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मन वालुहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे, और अल्लाह ताला अपना हकीकी ताल्लुक नसीब फरमावे, अल्लाह ताला हकीकी ताल्लुक नसीब फरमाए। मैं तो ये कहता हूं कि कोई अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मन वालुहु के दर पे जाके झुकता है और उससे मांगता है कि अल्लाह मेरी पूरी फुना जरूरत पूरी फरमा दे, फुना जरूरत पूरी फरमा दे, और अल्लाह अगर ये जरूरत पूरी न भी फरमाए तो उसे अल्लाह के खजाने से मांगी हुई चीज तो नहीं मिली, लेकिन अल्लाह के खजाने से अल्लाह के दरबार में नियाजमंदी का जो खजाना मिल गया वही क्या कम है? मांगी हुई चीज मिले ना मिले, अल्लाह के दरबार में नियाजमंदी का जो खजाना मिला मांग कर, इससे बढ़कर और कौन सा खजाना आपको चाहिए? अल्लाह ताला शान हो अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबीही।